भाषा के उत्पत्ति के सिद्धांत। भाषा कब और कैसे उत्पन्न हुई, यह प्रश्न पूर्णतया विवादास्पद एवं संदेहमूलक है। आज तक जिन विद्वानों ने इस प्रश्न पर विचार किया है, उन्होंने केवल कल्पना या अनुमान का ही सहारा लिया है। उनके पास कोई ठोस प्रमाण ऐसा नहीं है जिसके आधार पर वे यह सिद्ध कर सकें कि अमुक सिद्धांत पूर्णतया ठीक है। भाषा विज्ञान एक विज्ञान है और विज्ञान कभी कल्पना या अनुमान के आधार पर अपने सिद्धांतों एवं मतों की स्थापना नहीं करता, अपितु वह तो जो कुछ उसके सम्मुख विद्यमान है उसी को आधार बनाकर अपने तथ्य का निरूपण किया करता है। यदि भाषा विज्ञान भी अंधकार में भटकने की भांति तथ्यों एवं प्रमाणों की पुष्टि पृष्ठभूमि पर अपने सिद्धांतों कि नींव स्थापित नहीं करता तो वह विज्ञान न रहकर कुछ और ही हो जाएगा। अतएव भाषा की उत्पत्ति विषयक मतों का प्रतिपादन करना भाषा विज्ञान का कार्य नहीं है। इसी कारण आधुनिक भाषा वैज्ञानिक इस प्रश्न पर अपने विचार प्रकट करना समीचीन नहीं समझते। उनका मत है कि भाषा के उद्गम की समस्या भाषा विज्ञान की शक्ति से बाहर है। वस्तुतः मानव की उत्पत्ति और मानव समाज की सृष्टि से इस समस्या का घना संबंध है। यह मानवता के आदिम इतिहास का विषय है। मानव मस्तिष्क के विकास तथा समाज के संगठन के साथ साथ भाषा की क्रमिक सृष्टि हुई। यह कहना असंभव है कि मानव बोली का आरंभिक रूप क्या था, पर इन मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दोनों प्रकार की परिस्थितियों का निर्धारण हो सकता है जिनसे मनुष्य की बोली संभव हुई। अतः स्पष्ट है कि भाषा के उत्पत्ति का विषय भाषा विज्ञान से संबंधित न होकर मानव इतिहास तथा समाजशास्त्र से है और इतिहासकारों एवं समाजशास्त्रियों को ही इस विषय पर माथापच्ची करनी चाहिए। फिर भी विद्वानों ने भाषा की उत्पत्ति के बारे में अभी तक जो कुछ सिद्धांत निर्धारित किए हैं उनका ऐतिहासिक महत्व तो है ही, क्योंकि उनसे यह तो पता चलता है कि विद्वानों ने किस तरह इस प्रश्न पर विचार किया है और किस तरह इस समस्या के समाधान का प्रयास किया है। इसीलिए यहाँ उन प्रमुख सिद्धांतों का ही निरूपण किया जाएगा जो अत्यधिक प्रचलित हैं और जो असंख्य पीढ़ियों एवं अनेक शताब्दियों से प्रचलित भाषा के उद्गम की ओर यत्किंचित हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। पहला, दैवी सिद्धांत। भाषा की उत्पत्ति के बारे में सबसे प्राचीन सिद्धांत यह प्रचलित है कि भाषा की उत्पत्ति ईश्वर से हुई। संसार के सभी धार्मिक व्यक्तियों का यह विश्वास है कि जब संसार के सभी पदार्थ एवं सभी जीव ईश्वर ने बनाए हैं तब भाषा को भी उसके सिवा और कौन बना सकता है। अपनी इसी मान्यता के आधार पर हिंदू लोग संस्कृत भाषा को देववाणी कहते हैं और अन्य सभी भाषाओं की उत्पत्ति इसी देववाणी संस्कृत से मानते हैं। इसी आधार पर पाणिनि ने अपने 14 प्रत्याहार सूत्रों को महेश्वर सूत्र कहा है और शिव के डमरू की ध्वनि से उनका उत्पन्न होना बताया है। इसी तरह बौद्ध लोग अपनी धर्म पुस्तकों की भाषा मागधी यानी पाली को संपूर्ण भाषाओं का मूल कहते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध इसी भाषा को बोलते थे। जैनी लोग अर्धमागधी को आदि भाषा कहते हैं क्योंकि उनके तीर्थकर इसी भाषा का प्रयोग करते थे। ईसाई लोग हिब्रू भाषा को मूल भाषा मानते हैं क्योंकि ईसा मसीह ने सर्वप्रथम हिब्रू भाषा में ही उपदेश दिए थे और उनका पुरातन धर्म ग्रंथ इसी हिब्रू भाषा में है। मुसलमान अरबी भाषा को आदि भाषा मानते हैं क्योंकि उनका धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ अरबी भाषा में ही है और वे इसे ईश्वरीय भाषा कहते हैं। इस प्रकार विविध धर्मतावलंबी अपने अपने धर्म ग्रंथों की भाषा को ईश्वर से उत्पन्न कहकर भाषा के दैवीय उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। समीक्षा। इस सिद्धांत में सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि यदि ईश्वर ने ही भाषा को बनाया है तो संसार की सभी भाषाओं में एक रूपता क्यों नहीं। यदि भाषा एक ही ईश्वर द्वारा निर्मित होती तो सर्वत्र एक सी बोली जाती, क्योंकि संसार भर के कुत्ते एक से भौंकते हैं, बिल्लियां एक सी म्याऊं म्याऊं करती हैं, घोड़े एक से ही नहनाते हैं, कौवे एक से काँव काँव करते हैं, चिड़ियाँ एक सी चहकती हैं, फिर मानवों की वाणी में इतनी भिन्नता क्यों दृष्टिगोचर होती है। इसी कारण दैवी सिद्धांत इस समस्या का हल नहीं कर पाता। इस सिद्धांत के पीछे केवल आस्तिकता एवं श्रद्धा ही है। अतः तर्क के सम्मुख सिद्धांत कहीं नहीं ठहरता। इस सिद्धांत में बस इतनी सार्थकता है कि ईश्वर ने मानव को सुंदर वाग्यंत्र दिया है और उसका नियंत्रण करने वाली बुद्धि भी प्रदान की है, जिससे वह विविध प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण करता हुआ विभिन्न भाषाएं बोल सकता है। यदि ऐसा ही वाग्यंत्र एवं बुद्धि पशु पक्षियों को भी मिले होते तो वे भी मानवों की तरह विविध भाषाओं का प्रयोग करते, परंतु ईश्वर की यह कृपा केवल मानव पर ही हुई है। जिन्हें यह वाग्यंत्र नहीं मिलता वे गूंगे रह जाते हैं और कुछ भी बोल नहीं पाते। अतः वैज्ञानिक दृष्टि से यह मत सर्वथा अग्राह्य है। दूसरा, संकेत सिद्धांत। भाषा की उत्पत्ति के बारे में दूसरा सिद्धांत यह है कि पहले मानव की भाषा के समान पशुओं की भाषा के समान हुआ करती थी। ये आँखों से संकेत से या हाथ पर हिलाकर अपने विचार एवं भाव व्यक्त किया करता था, परंतु इसमें उसे बड़ी आपत्ति होती थी और वह अपना मंतव्य पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पाता था। इसलिए इस कठिनाई को दूर करने के लिए मानव एक स्थान पर एकत्र हुए और उन्होंने पारस्परिक विचार विनिमय द्वारा ऐसे ध्वनि संकेत स्थिर किए जिनके द्वारा वे एक दूसरे के विचारों को भली प्रकार समझ सकें। इन्हीं संकेतों से आगे चलकर भाषा की उत्पत्ति हुई। समीक्षा। इस सिद्धांत की अग्रलिखित चार त्रुटियां दृष्टिगोचर होती हैं। अ, यदि मानव के पास कोई भाषा पहले ही थी ही नहीं तो उसने सभी मानवों को इकट्ठा करने के लिए किस तरह सूचना दी होगी और किस तरह उन्होंने इकट्ठे होकर परस्पर विचार विनिमय किया होगा। आ, यदि मानव को कोई भाषा मिली ही नहीं थी तो यह कैसे अनुभव हुआ कि उसकी भाषा अपर्याप्त है और उसे विचारों में प्रकट करने के लिए अथवा पदार्थों के बोध के लिए और कुछ ध्वनि संकेत बनाने चाहिए। जैसे पशुओं के पास भी तो भाषा नहीं है, किंतु उन्हें आज तक अनुभव नहीं हुआ कि वे इकट्ठे होकर ऐसी भाषा का निर्माण करें जिससे वे अपने अपने मनोभाव सुगमता से व्यक्त कर सकें और अपने मंतव्य को भली प्रकार प्रकट कर सकें। ई, इस सम्मेलन में अधिकांश मानव इकट्ठे हुए होंगे, वहाँ विभिन्न पदार्थों के लिए विभिन्न ध्वनि संकेतों के निर्माण का कार्य हुआ होगा। बिना भाषा के निर्माण के यह निर्माण कैसे हुआ होगा? इन विविध नामों में से एक चौपाये को घोड़ा कहें, इसे गाय कहें अथवा इसे भैंस कहें। कैसे लोगों ने एक पदार्थ के लिए बहुत से सुझाव दिए होंगे और कैसे उनमें से किसी एक शब्द का निर्णय लिया गया होगा? ई, यदि मानव के पास पहले भी ऐसे साधन थे जिनके द्वारा वह लोगों को बुला सकता था, उन्हें इकट्ठा कर सकता था और परस्पर विचार विनिमय कर सकता था, तो फिर उसे भाषा की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? उक्त त्रुटियों पर दृष्टि डालने से संकेत सिद्धांत पूर्णतया हास्यास्पद प्रतीत होता है। इस सिद्धांत में केवल इतना ही सार है कि भाषा का घनिष्ठ संबंध समाज से है। समाज ही भाषा के शब्द और अर्थ के संबंध का निर्धारण करता है और समाज द्वारा निर्धारित ध्वनि संकेत ही पदार्थ का वाचक बनकर उस समाज के व्यक्तियों द्वारा ग्राह्य होता है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत में तनिक भी तथ्य नहीं है। तीसरा, अनुकरण सिद्धांत। कुछ विद्वानों का विचार यह है कि मानव ने सर्वप्रथम भाषा का निर्माण अनुकरण के आधार पर किया होगा। जैसे एक पक्षी काऊ काऊ, काऊ काऊ या काका बोलता था तो तुरंत मानव ने उसकी ध्वनि का अनुकरण करके उस पक्षी का नाम काक या काग रख दिया। इसलिए आज भी संस्कृत में से काक, असमिया में काउरी, मणिपुरी में क्वाक, मराठी में कावला, उड़िया में काऊ, तेलुगु में काकी, तमिल एवं मलयालम में कक्का, कन्नड़ में कागे, हिंदी में कागा, बंगला में काऊ, पंजाबी में कांग और अंग्रेजी में क्रो कहते हैं। ये सभी शब्द अनुकरण के आधार पर बने हैं। ऐसे ही एक पक्षी घूं 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 की ध्वनि करता था तो उसे हिंदी में गुग्गू यानी उल्लू, असमिया में हुड्डू, कन्नड़ में गुगी, तेलुगु में गुडलागुला, तमिल में गूंगे और मराठी में गुगड़ कहते हैं। ये सभी शब्द ध्वनि के आधार पर बने हैं। ऐसे ही कोकिल, म्याऊ, कूक आदि शब्द बने हैं। इसी प्रकार गर्जन तर्जन, कलकल, छल छल, मरमर, सरसर, चटपट, गड़गड़ाहट, घरघराहट, सनसनाहट, घिघियाना, मिमियाना, पिपियाना, तड़तड़ाना, फड़फड़ाना, गिड़गिड़ाना, खटखटाना, हिनहिनाना आदि शब्दों का निर्माण ध्वनि साम्य के आधार पर हुआ है। समीक्षा। इस सिद्धांत में भी निम्नलिखित दोष दिखाई देते हैं। अ, सभी भाषाओं में थोड़े से ही शब्द अनुकरणात्मक होते हैं और कुछ भाषाओं में तो एक भी शब्द अनुकरणात्मक नहीं होता। अतः इस सिद्धांत से यह ज्ञात नहीं होता कि अनुकरणात्मक शब्द से भिन्न भाषा के शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। आ, यह सिद्धांत मानवों को भाषा विहीन मानकर चलता है और यह सिद्ध करता है कि मानवों की भाषा पशु पक्षियों का अनुकरण करने पर प्राप्त हुई। अब यदि मानवों के पास पहले से कोई भाषा न थी तो उन्होंने पशु पक्षियों या नदी निर्जनों की ध्वनि का अनुकरण कैसे शब्द में कैसे बनाए होंगे। ई, सभी भाषाओं में अनुकरणात्मक शब्द भी एक से नहीं होते। जैसे झरझर की ध्वनि करने वाले को संस्कृत में निर्झर, हिंदी में झरना, अंग्रेजी में स्ट्रीम, जर्मनी में स्टोम, रूसी में रुचेई, फ्रेंच में रिव्स आदि कहते हैं। यदि अनुकरण के आधार पर ही भाषा के शब्द बने होते तो सभी समान होते, किंतु ऐसा सर्वत्र दिखाई नहीं देता। अतः उक्त दोषों के कारण अनुकरण सिद्धांत को पूर्णतः अंगीकार नहीं किया जा सकता। इतना अवश्य है कि भाषा में कुछ शब्द अवश्य अनुकरण के आधार पर निर्मित हुए हैं, किंतु संपूर्ण भाषा की उत्पत्ति अनुकरण के आधार पर नहीं हुई है। अतः यह मत सीमित अंश में ही मान्य है, पूर्णतया नहीं। चौथा, मनोभाव सिद्धांत। इसे मैक्स मूलर ने पुह सिद्धांत कहा है। इसका अभिप्राय यह है कि हर्ष, शोक, आश्चर्य, विस्मय, क्रोध, क्षोभ, घृणा आदि मनोभावों के प्रकट करने पर जो ध्वनि सहज मुख से निकल पड़ती है, उन ध्वनियों से भाषा की उत्पत्ति हुई है। ये मनोभाव इतने तीव्र एवं आवेगपूर्ण होते हैं कि मानव के वाग्यंत्र से इन मनोभावों को व्यक्त करने वाली ध्वनियाँ अपने आप निकल पड़ती है। जैसे किसी दुख के अवसर पर हिंदी भाषा भाषी के मुख से आह ध्वनि अचानक निकल पड़ती है, बंगला भाषी में अहो कहकर उठता है, असमिया भाषी अहो कह उठता है, मणिपुरी भाषी ओह कहने लगता है, उड़िया भाषी ओह पुकार उठता है, तमिल एवं तेलुगु भाषी अयो कह उठता है, मलयालम एवं कन्नड़ भाषी आई कह उठता है, जर्मन भाषी के मुख से ओ निकल पड़ता है, फ्रांसीसी के मुख से अही ध्वनि निकल पड़ती है, अंग्रेज ओह कह उठता है आदि। जैसे विविध मनोभावों को व्यक्त करने के कारण उनके मुख से हाय, धिक, छी छी, धत, पुह, पिश, हुर्रा, फाई आदि ध्वनियाँ निकला करती है। इन सहज व्यक्त ध्वनियों में से ही धीरे धीरे भाषा बनती है। समीक्षा। इस सिद्धांत में निम्नलिखित दोष स्पष्ट दिखाई देते हैं। और सबसे प्रमुख दोष तो यह है कि किसी भी भाषा में केवल मनोभावों के सूचक शब्द ही नहीं होते, अपितु अन्य प्रकार के अनेक शब्द भी होते हैं जिनकी उत्पत्ति का समाधान उक्त सिद्धांत से नहीं होता। आ, उक्त मनोभाव संबंधी ध्वनियाँ केवल भावावेश अथवा मनोवेग की तीव्रता को ही व्यक्त करती हैं, इनका संबंध भाषा की स्वाभाविक अभिव्यक्ति से नहीं है। अतः ये ध्वनियाँ भाषा के मुख्य क्षेत्र से बाह्य मानी जाती है। ई, ये ध्वनियाँ सहज एवं स्वाभाविक होती हैं, इनका उच्चारण कभी सोच विचार कर नहीं किया जाता, अतः इनका संबंध विचारों के व्यक्ति या चिंतन मनन से कदापि नहीं हो सकता। ई, सभी भाषाओं में मनोभावों के सूचक शब्द अत्यंत अल्प मात्रा में ही होते हैं। उ, ये मनोभावों के अभिव्यक्ति करने वाले शब्द उसी भाषाओं में एक से नहीं होते। जैसे प्रसन्नता प्रकट करने के लिए अंग्रेजी में हुर्रा कहते हैं, जबकि हिंदी में वाह या ओहो कहते हैं। घृणा प्रकट करने के लिए अंग्रेजी में पुह या पिश कहता है, जब एक हिंदुस्तानी छी छी कहता है। किसी को खेलकूद में बढ़ावा देने के लिए एक अंग्रेज ब्रेवो कहता है, जबकि हिंदुस्तानी शाबाश कहता है। ऐसे ही दुख प्रकट करते समय एक फ्रांसीसी आही कहता है, जबकि एक जर्मन आउ कहता है और एक जटलैंड वासी आउस कहता है। अतः मनोभाव के अभिव्यक्ति के लिए भी सर्वत्र एक जैसे शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं देखी जाती। ऊ, इन ध्वनियों का प्रयोग प्रायः तभी होता है जबकि मनोवेग की तीव्रता के कारण मानव का कंठ या तो रुद्ध हो जाता है या वह भावावेश के कारण बोल नहीं पाता अथवा वह इतना गदगद हो जाता है कि उसकी वाणी मुक हो जाती है। अतः इन ध्वनियों का संबंध मूल भाषा से नहीं है। री, इसके साथ ही सभी मनोवेगों को व्यक्त करने वाले ध्वनियों को लिपिबद्ध करना भी सर्वथा असंभव है। जैसे गाड़ी हाँकते समय जब बैल अचानक धीमा पड़ जाता है, तब गाड़ी वाहन उसे तेज करने के लिए जो मनोभावात्मक ध्वनि व्यक्त करता है उसका उच्चारण तो किया जा सकता है, परंतु लिपिबद्ध करना सर्वथा दुष्कर है। वह कुछ कुछ च कुछ जैसी क्लिक ध्वनि करती है। ऐसे ही किसी पर तरस खाते समय या किसी के प्रति खेद व्यक्त करुणा व्यक्त करते समय जो मनोभावात्मक ध्वनि व्यक्त होती है उसको लिपिबद्ध करना कठिन है। उक्त दोषों के कारण इस सिद्धांत को भाषा की उत्पत्ति का कारण मानना उचित नहीं जान पड़ता। इस सिद्धांत की इतनी ही उपयोगिता है कि भाषा के कुछ शब्द जैसे हाय हाय, ओह वाह वाह, धिक्कारना, दुरदुराना, वाहवाही, हाहाकार, सितकार, चित्कार आदि अवश्य हैं जिनकी उत्पत्ति मनोभाव की सहज अभिव्यक्ति के कारण हुई है, किंतु संपूर्ण भाषा की उत्पत्ति इनसे नहीं हुई है, इसीलिए इसमें आंशिक सत्य के विद्यमान है। पांचवा, श्रम ध्वनि सिद्धांत। इसे अंग्रेजी में यो हे हो सिद्धांत कहा गया है। इसके प्रवर्तक नवारे माने जाते हैं। इनका कथन है कि जब मानव शरीर परिश्रम करता है तब उसके श्वास प्रश्वास का वेग सहज तीव्र हो जाता है। उस तीव्रता के कारण उसकी स्वर तंत्रियों में कंपन होने लगता है और उस कंपन के कारण उसके मुख से कुछ ऐसी ध्वनियाँ निकल पड़ती हैं जिनसे उसे आराम भी मिलता है और वह अपना काम सरलता से करता रहता है। जैसे कपड़ा धोते समय धोबी के मुख से छियो छियो की ध्वनि, नाव खेते समय मल्लाहों के मुख से हैया हैया ध्वनि, बुरा कूटते समय बुरा कूटने वाले मजदूरों के मुंह से हैं हैं की ध्वनि, सड़क कूटते समय या पार के लिए जाते समय अथवा किसी भारी पदार्थ या छप्पर को एक साथ उठाते समय ऐसी ध्वनियाँ सहजी मानवों के मुख से निकला करती हैं। अतः नुआरे का मत है कि इन ध्वनियों से भाषा की उत्पत्ति हुई है। समीक्षा, इस सिद्धांत में निम्नलिखित दोष दिखाई देते हैं। और ये श्रम मूलक ध्वनियां निरर्थक होती है, अतः निरर्थक ध्वनियों के कभी सार्थक ध्वनिमयी भाषा की उत्पत्ति संभव नहीं है। आ, इन ध्वनियों का किसी भी भाषा से कोई विशेष स्थान नहीं है, क्योंकि छियो छियो या हैं या हो आदि ध्वनियां प्रायः अर्थ शून्य होती हैं और इनका उच्चारण केवल काम करते समय अनायास ही उन काम करने वालों द्वारा होता है जिनकी स्वरतंत्रियां परिश्रम के कारण कंपित होती हैं, तभी व्यक्ति इनका उच्चारण नहीं करते। ई, इन ध्वनियों का संबंध सामूहिक कार्य करने से भी है। जैसे किसी भारी पदार्थ को उठाने के लिए जब एक आदमी पहले जोर लगाव कहता है तब अन्य सभी मजदूर हैं ये साहब एक साथ कहते हैं, जिसे सामूहिक शक्ति द्वारा वह भारी पदार्थ सहज ही में उठ जाता है। ई, इस ध्वनियों का संबंध बौद्धिक चिंतन मनन से नहीं है, केवल शारीरिक श्रम से। अतः निर्विवाद सत्य है कि ऐसे निरर्थक एवं चिंताहीन ध्वनियों से कभी भाषा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। हाँ, इतना अवश्य है कि भाषाओं में ऐसे ही कुछ शब्द मिल जाते हैं जिनका संबंध श्रम ध्वनियों से होता है, जैसे छियो छियो की ध्वनि पर ही कपड़ों का पछाड़ना, प्रक्षालन करना आदि शब्द बने होंगे, परंतु इनसे भाषा के विशाल भंडार की पूर्ति होना सर्वथा असंभव है। अतः यह सिद्धांत भी अंशतः ठीक है। आठवां, धातु सिद्धांत। इसके प्रवर्तक मैक्स मूलर हैं और उन्होंने इसे रूट थ्योरी कहा है। मैक्स मूलर का मत है कि प्रायः सारी सृष्टि के भीतर हम एक नियम सर्वथा काम करता हुआ पाते हैं। वह यह कि आप किसी पर चोट अथवा आघात करिए तो उससे ध्वनि निकलेगी। अपनी प्रारंभिक और उस समय की विकसित अवस्था में मनुष्य पशुओं के समान केवल विस्मय सूचक शब्दों द्वारा अपने इंद्रिय ज्ञान को व्यक्त करने के योग्य ही नहीं था, या अपने अनुभवों को पशु पक्षियों के ध्वनि की नकल पर शब्द बनाकर अपने अनुभव व्यक्त नहीं कर सकता था। वरन इसमें वह शक्ति थी जिसके द्वारा वह अपने विवेक युक्त बुद्धि के विचारों को भी स्पष्ट ध्वनि से व्यक्त कर सकता था। यह शक्ति उसने स्वयं पैदा नहीं की। यह पहले तो प्रकृति के रूप में थी, फिर मन की प्रवृत्ति बन गई जिसे रोकना असंभव हो गया। जहाँ तक इस प्रवृत्ति का संबंध है, भाषा प्रकृति के क्षेत्र की एक उपज है। जैसे जैसे इन प्रवृत्तियों की आवश्यकता घटती जाती है, वैसे वैसे ये मनुष्य की प्रकृति से लुप्त होने लगती है। ये प्रवृत्तियाँ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं और कई क्षेत्रों में इनका अस्तित्व ही नहीं रहता। इस प्रकार हम में जो सृजनहार शक्ति है उसने हमारे मस्तिष्क में जब लहरें पैदा की और हमने इस हलचल को ध्वनि के रूप में व्यक्त किया तो यह ध्वनि जब इसका उद्देश्य पूरा हो गया तब मर गई। प्रारंभ में मस्तिष्क के इस हलचल के कारण ध्वनियों के इन रूपों की संख्या अनगिनत रही होगी और बाद को जब इन रूपों के भीतर शब्दों में भी एक प्रकार की होड़ चली होगी कि कौन जीवित रहने योग्य है और कौन मरने के, तो ये ध्वनियाँ बहुत कम शेष रह गई होंगी। क्योंकि एक ही विचार व्यक्त करने के लिए जो धातुओं का ढेर जमा हो गया होगा उनमें से बहुत सी धातुएं अपनी नाना कमजोरियों के कारण स्वयं ही मर गई होंगी और उनके स्थान पर अधिक स्पष्ट विचार करने वाली धातुएं ही शेष रह गईं। समीक्षा। इस सिद्धांत के निम्नलिखित दोष दिखाई देते हैं। और यह सिद्धांत पूर्णतया तर्कहीन है क्योंकि इस बात का कहीं भी कोई प्रमाण नहीं मिलता कि मानव के अंदर पहले कभी ऐसी शक्ति थी जिसके द्वारा वह अपने विवेक युक्त बुद्धि के विचारों को स्पष्ट ध्वनि से व्यक्त करने के लिए धातु निर्माण करता था। यह भी असंभव है कि जिस तरह टीन पर आघात करने से उसमें से ध्वनि निकलती है उसी तरह मानव के अंदर विद्यमान शक्ति से भी ध्वनि निकलती ही थी और तुरंत बाह्य पदार्थ के लिए शब्द बन जाता था। यह मत जानकर मानकर चला है कि संसार की सभी भाषाएं धातुओं से विकसित हुई हैं, किंतु ऐसा नहीं। चीनी भाषा धातु से विकसित नहीं हुई है। ई घंटे की ध्वनि की समानता पर मानव के मुख से उच्चरित ध्वनियों का निरूपण किया गया है। कहाँ निर्जीव घंटा तथा कहाँ सजीव मानव का वाग्यंत्र। उ जैसे जादूगर अपनी छड़ी घुमाकर नए नए पदार्थ बना लेता है वैसे ही मानव की शक्ति लगातार धातुएं बनाती चली गई और फिर अपना कार्य करके नष्ट हो गई। यह बात हास्यास्पद लगती है। उक्त दोषों के कारण स्वयं मैक्स मूलर महोदय को अपना यह मत अवैज्ञानिक प्रतीत हुआ और उन्होंने इसका स्वयं निराकरण कर दिया।